सुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय ओम नमो भगवते वासुदेवाय प्रभु जी फिर आपकी आज्ञा से और आशीर्वाद से श्रीमान दामोदर पंडित जी की आशीर्वाद से मैं कुछ दो शब्द तो कहना चाहूँगा हरे कृष्ण। सो कार्तिक के इस सुंदर महीने में हम सब लोग यहाँ एकत्र हुए हैं और ये मत समझना कि कार्तिक कभी समाप्त हो रहा है। कार्तिक आपके हृदय में सदैव जागृत रह सकता है, ऑल द टाइम आपके मन में आपके हृदय में कार्तिक का भाव हमेशा विराजमान रह सकता है। बहुत सुंदर महीना ये, इसमें भगवान ने बहुत ही मधुर मधुर लीलाएं की हैं। श्री वृंदावन धाम का सार जो है वो इस महीने में प्रकट हुआ है। कोई भी व्यक्ति जब होता है तो वो कितना भी काला कलूटा कुरूप क्यों न हो, लेकिन जब वो बाल रूप में होता है तो बहुत आकर्षक होता है। दुनिया का सबसे बड़ा कुरूप आदमी भी होगा, लेकिन जब वो बालक होता है तो बहुत मीठा लगता है। अभी आप सोचे कि सर्वोत्तम सर्व सुंदर जो भगवान है वो जब बाल स्वरूप में आते हैं तो कितने सुंदर होंगे, इतने सुंदर थे भगवान कि जब उनकी गेंद जमुना जी में गिरती थी खेलते खेलते कभी कभी, तो उसको निकालने में जब जाते थे और जब नदी में निकालने के लिए झुकते थे तो अपना ही प्रतिबिंब देखकर वो बेहोश होकर नदी में गिर जाते थे, इतना सौंदर्य था उनका। तो भगवान का सौंदर्य जो है वो इतना मन लुभावना है कि सब ब्रजवासी जो है वो हमेशा आनंद के सागर में डुबोए अपने आप को रहते थे। इति दृक्स्व लीला भीर आनंद कुंडे। कुछ लोग पूछते हैं कि 7 दिन और 7 रात बिना खाए बिना पिए बिना सोए बिना कोई लंच ब्रेक डिनर ब्रेक ब्रेकफास्ट ब्रेक ये सब बिना किए कैसे लोग रहे 7 दिन। तो भगवान का जो रूप माधुर्य है वो इतना अगाध है कि एक तो स्वयं कृष्ण भगवान श्याम सुंदर जी, दूसरा त्रिभंग स्वरूप, कोई व्यक्ति ऐसा खड़ा है सीधा और फिर 3 जगह मुड़ कर खड़ा हो गया, एक हाथ में बांसुरी ऐसे पकड़ी हुई है और फिर एक हाथ में गिरिराज को धारण किया है, वो इतना सुंदर दृश्य था। तो उसका उत्तर इसमें मिलता है कि वो इतना सुंदर दृश्य था, इतने सुंदर रूप माधुरी थी कि 7 दिन 7 रात क्या 700 रात और 700 दिन भी होते तो भी लोगों को भूखने लगती क्योंकि अपने नेत्रों के माध्यम से भगवान के रूप का जो अमृत है वो उसको पान कर रहे थे। ना भूख लग रही थी, ना नींद आ रही थी, ना कोई प्रकृति का वेग उनको त्रस्त कर रहा था। तो ये जो गिरिराज की लीला है ये भी इसी महीने में हुई है। हम सब जानते हैं दीपावली के दिन भगवान को बांध दिया गया था, बहुत सुंदर लीला है। भगवान ने अधिकतर माखन चोरी की लीला इसी महीने में की है। हाँ, तो एक आध दो माखन चोरी का बता देंगे। तो ये जो कृष्ण भगवान है बाल गोपाल जी, कहते हैं कि वो वैकुंठ छोड़ के यहाँ पर क्यों आए, गोपियों का छाछ खाने के लिए। वैकुंठ का ऐश्वर्य भी उनको तुच्छ लगता है इन ब्रजवासियों के मक्खन और छाछ के सामने, इसलिए सब कुछ छोड़ के और अपना जो पद है भगवान होने का, हाँ भगवत्ता, वो भी छोड़ के वो यहाँ पर आए हैं। एक ऐसे बालक जैसे कोई जानता नहीं कोई भगवान है, ऐसे रूप में, और वो भी चप्पल भी धारण नहीं करते, नंगे पैर घूमते और घर घर में जाके माखन चुराते हैं, क्योंकि जो माखन जो है उसको कहते हैं नवनीत, और नवनीत का मतलब है कि दूध का सार, दूध के अंदर छुपा हुआ होता है, जब मंथन करते हैं प्रेम से तो उसे मक्खन पैदा होता है। वैसे ये गोपियों के हृदय का सार है नवनीत, उनका प्रेम, उसको वो अनुभव करने के लिए यहाँ पर आते हैं। और अपने घर में 100 स्पेशल गायों का देखभाल माता करती है, उनके पास लाखों गायें हैं लेकिन 100 स्पेशल गाय जो होती है जो ऐसी घास खाती है जिस घास को कमल की खुशबू आती है। अभी तो केवल सुनने में ही है, देखने को नहीं मिलता है, लेकिन कमल की सुगंध आने वाली घास जो है वो उन गायों को माता खिलाती थी, 100 स्पेशल गायों को। उन गायों के दूध को भी कमल की खुशबू आती थी। फिर दही जमाने के बाद भी आती थी और जब मक्खन निकलता था उसको और तीव्र रूप से सुगंध आती थी कमल की। ऐसा मक्खन रोज मैया खिलाती थी और ऐसे दूध से रोज मिठाइयाँ बनाती थी और पेट भर खिलाती थी। उसके बाद भी दूसरों के घर में जाके चोरी करती थी। तो जब गोपियाँ आके कंप्लेंट करती थी तो मैया कहती, झूठ है ये सब, मेरे पास जो मक्खन है वो तुम्हारे किसी के पास में नहीं है। और पूरा वर्णन करती थी प्रोसीजर कि कैसे कैसे मैं कैसे कैसे करती हूँ और कैसे विशेष 100 पद्मगंधा गायें मैंने बना के रखी है, उनका मक्खन से रोज सुबह शाम खिलाती रहती हूँ पेट भर के, वो तुम्हारे घर में आके मक्खन चुरा नहीं सकता, इम्पॉसिबल। फिर भी प्रभावती जो उपनंद की पत्नी है और बाकी गोपियों की पत्नियां हैं वो हर रोज आके शिकायत करती थी, और शिकायत करना भी उनका एक बहुत हृदय से आनंद की एक क्रिया थी। वो रोज जब मक्खन बनाती थी ना मंथन, तो वो एक ही प्रार्थना करती थी कि आज मेरे घर पे आ जाए चोरी करने के लिए। हाँ, कंप्लेंट करना भी अच्छा लगता था और प्रार्थना भी यही करती थी कि मेरे घर में आ जाए, ऐसा मंथन करूंगी, ऐसा सुंदर मक्खन निकालूंगी कि मेरे घर पे आएगा। और इतना ऊंचा भी रखती नहीं थी कि मिल नहीं पाए और इतना नीचा भी रखती नहीं थी कि आसानी से मिल जाए। सब लीला देखने की इच्छा थी उनको, और जानबूझ के उसको मक्खन चोरी करने को देती थी और कुछ देर बाद पकड़ती थी और फिर बोलती थी अभी मैया के पास ले जाऊंगी। तो फिर वो बहुत चालाक बालक जो है वो अलग अलग बहाने बनाता था, बोला देखो गोपी मैं कहता हूँ मुझे मत पकड़ना, आगे जाके पछताओगी, मैं बता रहा हूँ मुझे छोड़ दो, आगे अच्छा नहीं होगा आपके लिए। फिर भी वो गोपियाँ बहुत, क्योंकि मैया हमेशा कहती थी यशोदा माई कि आप लोग रोज आते हो लेकिन तब मेरा बालक मेरे घर पे रहता है और आप कहती हो मक्खन चुरा रहा था, तो मैं कैसे मान लूँ, एक बार रंगे हाथ पकड़ के लेके आओ उसको। तो जब पकड़ लिया एक बार तो गोपियाँ बड़ी खुश थी कि बहुत देर के बाद पकड़ा है, बड़े कीमती वस्तु है। तो बहुत बताते हैं कन्हैया जी मत करो, मत ले जाओ मुझे, पछताओगे आप। फिर भी लेके जाते हैं। फिर जब घर पास में आता है तो बोलते हैं देखो अभी भी सोचो, मत ले जाओ पछताओगे आप। फिर भी वो गोपी जा रही एकदम जोर जोर से, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, और दूर से पुकारती है यशोदा दीदी देखो तुम्हारा लाला को पकड़ के लाया आज रंगे हाथ, ये लो। ऐसे पीछे से आगे करते हैं तो उसी का लाला, उसी का बेटा उसके हाथ में। तो यशोदा कहते अच्छा ये मेरा लाला है, वाह कितनी बढ़िया बात है। तो दीदी अरे तो कन्हैया को पकड़ के लाया था मैंने, क्या अभी क्या हो गया 2 मिनट के अंदर। तो बालक भी जो हाथ में है अभी, वो बालक बना हुआ है ना, वो जो उसके उसका बालक बना हुआ है वो भी बहुत मुरझाया मुरझाया सा है, अरे मुझे क्यों पकड़ के लेके आया मैया मेरी। तो फिर वो बहुत शर्मिंदा हो जाती है, यशोदा बहुत ताने देती है उसको, अरे बड़ी आई होशियार बन के अपने बालक को पकड़ के लेती है और मेरे बालक को ताने देती है, और पीछे से मैया क्या शोर हो रहा है। तो फिर वो बहुत शर्मिंदा होकर चले जाती है। कुछ देर के बाद 2 मिनट के बाद में फिर वही कृष्ण उसके हाथ में, मतलब तो मैंने कहा था ना बचता होगी। तो एक दिन वो मटके के अंदर दोनों हाथ यहां तक, दोनों हाथ मुंह में मक्खन सब जगह लगा हुआ ऐसे पकड़ती गोपी। तो कृष्ण बोलते मैंने मक्खन नहीं खाया तुम्हारा, अच्छा, मुंह में लगा हुआ है, हाथ में यहाँ तो घुसा हुआ है, पूरा मक्खन ही मक्खन सब जगह पे है। नहीं, मैंने नहीं खाया है। वो ऐसा था कि जब मैं यहाँ से गुजर रहा था तो मैंने देखा कि हजारों लाखों चींटियां आ रही है। तो मैंने देखा कि अरे इतना कीमती माखन तुमने इतनी मेहनत करके बनाया है, उसको दूध बनाया पहले, फिर गर्म किया, फिर छाछ लगाया, जब छाछ दही जमाया, फिर मंथन किया, फिर उसको बनाया, फिर संभाल के रखा, और चींटियां खा रही उसको। अरे ये कैसे मुमकिन है? तो मैंने सोचा कि आप, मैं आज आपकी सेवा करूंगा, आपके मक्खन को चींटियों से मुक्त करूंगा। इसलिए मैंने चींटियों को निकालना शुरू किया। वो चींटियाँ बड़ी अजीब होती हैं, जब भी आप निकालते तो आपके हाथ पे चली जाती। तो जब मैं निकाल रहा था तो देखा कि बहुत गहराई तक पहुंच गई थी वो। तो मैंने गहराई तक प्रवेश किया हाथ डाल के, कोई निकाल लो एक एक चींटी को। तो कुछ चींटियाँ मेरे हाथ पे आ गई, अब हाथ से ऊपर बाजू पे आ गई, बाजू पे कंधे पे आ गए, कंधे पे आ गए गले में आ गए, गले में आ गए तो गाल पे आ गई, गाल पे आ गए तो होठों में आ गई। तो मुझे गुदगुदी होने लगी। तो मैंने मक्खन सा भरा हुआ हाथ निकाला और थोड़ा सा ऐसे मक्खी को, हमने चींटी को बाजू में कर दिया। उस समय कुछ मक्खन मेरे होठों को लग गया, तो मेरे जिह्वा अपने आप बाहर आ गए। मैं चाहा तो नहीं था, लेकिन अपने आप बाहर आ गई और चाट लिया। मैंने मक्खन नहीं खाया तुम्हारा, कुछ नहीं किया मैंने तुम्हारा। इस तरह से हर रोज की नई नई कहानी है, और रोज आके गोपियां कंप्लेन करती थी। और कैसे कंप्लेन करती थी, वो बहुत अजीब सीन था वो। हाँ, ऐसे मैया खड़ी है सामने, अगर आपको कंप्लेन करना है, मुझे इनको कंप्लेन करना है तो मैं इनको देख के कंप्लेन करूंगा ना। प्रभु जी, ये तुम्हारे भक्त लोग कैसे देखो बर्ताव करते हैं, अच्छा नहीं है, आपको ट्रेनिंग अच्छी दे दो। तो मैं आपको बोल के बताऊंगा ना, लेकिन मैं आपको कंप्लेन कर रहा हूँ और यहाँ देख रहा हूँ, प्रभु जी देखो आपके बच्चे कितने हैं, इनको ठीक किया करो। तो अजीब सा दृश्य है ना ये। तो उस तरह से वो देख रहे हैं अंतपुर की तरह, जहाँ पर कृष्ण भगवान का बेडरूम होता है ना, शयन कक्ष, और यशोदा मैं यहाँ खड़ी है, लेकिन वहाँ देख के कंप्लेन कर रही है उसको। क्योंकि उनका उद्देश्य क्या है कि अभी माखन चुरा के तो गया, दर्शन हो गया, अभी चला गया, वो दर्शन करने की आस बढ़ रही है, दर्शन करने के हेतु आ रही है, कंप्लेंट का बहाना है लेकिन दर्शन करना है उसका। तो इस तरह से कई प्रकार की कहानियां ऐसे ब्रज में हैं जो माखन चुराने वाली, लेकिन कभी रंगे हाथ नहीं पकड़े गए वो। जब भी पकड़े गए, एक और कहानी बताता हूँ। तो एक बार क्या हुआ कि सब गोपियाँ परेशान थी, क्योंकि वो इनको इतना परेशान करते थे, कभी हाथ में नहीं आते थे। एक बार सोचा उन्होंने कि अभी हम लोग ना एक ऐसा कमरा ढूंढेंगे जिसके सब दरवाजे बंद और एक ही दरवाजा खुला, और अंधकार वाला कमरा होगा, और उसके अंदर बहुत सारा माखन नीचे लटकाएंगे, बहुत नीचे, और एक घंटी लटकाएंगे उसका। और वो घंटी को बताएंगे कि जैसे ही खाएगा ना तू बच जाना, तू बचना। हाँ, तो घंटी कहती ठीक है। और सब गोपियाँ तय करती है कि अभी आज ऐसा स्ट्रैटेजी होना चाहिए कि कौन किसको पकड़ेगा, कन्फ्यूजन नहीं होना चाहिए, अपना टारगेट क्लियर होना चाहिए कि मुझे बलदेव को पकड़ना है, मुझे वो मधुमंगल को पकड़ना है, मुझे उज्ज्वल को पकड़ना है, मुझे सुबल को पकड़ना है। ऐसे सबका नाम पेयरिंग करके रखा था कि कोई कन्फ्यूजन ना हो, भीड़ भाड़ में फिर कहाँ किसको पकड़ेंगे, अपना टारगेट फिक्स होना चाहिए। तो सब तय करते हैं, प्लानिंग करते हैं, कौन कृष्ण को पकड़ेगा, कौन बलराम को पकड़ेगा, मधुमंगल को, सुबल को, उज्ज्वल को, कौन पकड़ेगा, सब फिक्स हो गया था। और सब लोग जाके वो झाड़ियों में छुप गए। कुछ देर बाद में कन्हैया, बलदेव, सारे फ्रेंड्स आए और देखा, अरे एक ही दरवाज़ा खुला है, बहुत नीचे नीचे मटके लगे हुए हैं, आज तो बढ़िया दिन है बहुत, अरे घंटी भी लगी हुई है। अच्छा, तो घंटी से पूछते हैं, अरे घंटी तू क्यों लगी यहाँ पर? वो कैसा है ना, आपने तो रिवाज बना के रखा है कि जब भी आप कुछ खाते हो तो मैं बचती हूँ, ये मेरा रिवाज है, आपने बनाया हुआ नियम है। नहीं, लेकिन आज आपका नियम ऐसा है कि आज आप नहीं बचोगी। आज मेरी आपको विनती है, हमारा कॉन्ट्रैक्ट है आज का, कि हम खाएंगे और आप नहीं बचेंगे। बोला ठीक है, कोई बात नहीं। और तुरंत जाके सब लोग छपट पड़ते हैं अलग अलग मटकों पर, और जैसे ही कृष्ण भगवान अपने मुंह में मक्खन डालते हैं, घंटी बजने लगती है। और जैसे ही घंटी बजती है, सारी गोपियां झपक पड़ती है ऊपर से, कोई मौका नहीं कहा भागने के लिए, कोई साइड नहीं, कोई बीच में कुछ नहीं, ऐसा ऊपर से झपकते हैं अपने अपने सावज, मतलब कि अपने अपने टारगेट के ऊपर, ऐसा कस के पकड़ते हैं, बाहें मोड़ लेते हैं, पीछे कर देते हैं, बंदी बना लेते हैं। फिर भी ये बहुत चालाक होते हैं ब्रज बालक, ऐसा भागते हैं ना उनको उल्लू बनाकर, उनके पीछे पीछे भागते भाग जाते हैं। और भागते कैसे हैं, उसी घर के ऊपर एक खिड़की खुली रहती है, ऐसे फटाफट क्या कहते हैं उसको, एक दूसरे का मंजिल बनाते हैं और ऊपर चले जाते हैं। देखते देखते गोपियों के आंखों के सामने एक 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 भाग रहा है खिड़की से, सब भाग जाते हैं, लेकिन एक व्यक्ति नहीं भाग सकता, क्योंकि खिड़की है छोटी, उसका पेट है बड़ा, तो वो अटक जाता है। और सब लोग ऊपर लाइन लगा के ऊपर खींच रहे हैं, सब लोग खींच रहे हैं, इसको भी खींचते हैं, लेकिन इसका पेट जो है ना वो खिड़की में आके अटकता है, और नीचे से गोपियाँ पैर खींच रही हैं और ऊपर से हाथ खींचे जा रहे हैं, लेकिन ग्रेविटी का फोर्स कहाँ होता है, नीचे होता है ना। इस तरह से जैसे ही नीचे से खींचते सब गोपियाँ, ये धड़ाड़ से गिर जाता है। उसका नाम क्या है, मधुमंगल। और मधुमंगल को बहुत पीटते हैं ये लोग, बहुत हाथ से पैर से मुक्के से ऐसे मारते, डंडे से बहुत पीटते हैं, जोर जोर से चिल्लाता है, कन्हैया बलुआ गोपाल बचाओ बचाओ बचाओ। वो बोल रहे मधु मधु भाग जा, कैसे भागो, मार रहे हैं। तो फिर वो बहुत दूर भागते हैं तो उनको बहुत दया आती है, अरे बेचारा हम तो भाग गए सब लोग, बेचारा वो अटक गया, उसको बचाना चाहिए, कुछ ट्रिक करना चाहिए। तो कृष्ण बलराम ना रिटर्न आ जाते हैं और कहते हैं, अरे गोपियों तुम इतनी धर्म भ्रष्ट हो गई हो, तुम जानते नहीं ये कौन है, ये तो ब्राह्मण का पुत्र है, ब्राह्मण के पुत्र का पूजा करना चाहिए, दान देना चाहिए, दक्षिणा देनी चाहिए, भोजन खिलाना चाहिए, मिठाई खिलानी चाहिए, और तुम उसको मार रहे हो, तुम सब लोगों का विवाह सात सात बीवी वाले बुड्ढों से होगा। इसकी सात पुरानी बीवियां हैं, उसके साथ तुम्हारा विवाह होगा। तो जैसे भी वो भोली बेचारी भोली भोली गोपियां होती है, जब ऐसे बहुत कठोरता से बोला जाता है तो बड़ा डर लगता है उनको, बोला अच्छा तुरंत मारना बंद कर दे, अरे माफ़ी करना। तो बोलते हैं, फिर मधुमंगल पूरा उठ जाते हैं, अभी उसका टाइम शुरू हो गया ना, बोलता है केवल माफ़ी मांगने से काम नहीं होगा, हम आपको शाप देते हैं। नहीं 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 क्या करना चाहिए बताइए। तो फिर वो बोलते हैं कि अच्छे अच्छे लड्डू बना के लेके आओ आपके घर से, अलग अलग वैरायटी होनी चाहिए, इतना नंबर होना चाहिए वैरायटी का कि गिनने में तक कष्ट होना चाहिए, जाओ मिठाई लेके आओ, लस्सी बनाओ, हम यहाँ इंतज़ार कर रहे हैं। सब जो गोपियाँ जाती है भाग भाग के, डर है ना उनको शाप मिलेगा ब्राह्मण का तो कैसे होगा, अरे सांदीपनी मुनि का पुत्र है वो, पूर्णमासी का प्रपोत्र है वो, ग्रैंड सन और पूर्णमासी, बड़ी फेमस व्यक्ति है सब लोग, हाँ सेलिब्रिटीज ऑफ ब्रजभूमि, सांदीपनी एंड पूर्णमासी, नॉट ऑर्डिनरी पीपल। और डर लगता है उनको, घर जाते हैं बहुत ही बढ़िया बहुत प्रेम से, हाँ लड्डू लेके आते हैं बहुत सारे, इतने सारे लड्डू लेके आते हैं गिनती भी मुमकिन नहीं है, और उसको एक सिंहासन पे बिठाते हैं, और सिंहासन पे बिठा के उसकी आरती करते हैं, गीत गाते हैं, और फिर लड्डू खिलाते हैं। फिर मधुमंगल जो है ऐश से बैठकर कई घंटों तक लड्डू खाता है और सबको आशीर्वाद देता है, आपका सबका विवाह जो है जवान गोपों से होगा, बुड्ढों से नहीं होगा। ऐसे ही एक बार घंटी लगाई हुई है और घंटी बज रही है तो गोपी उसको पकड़ लेती है, वैसे ही माखन खाते हुए पकड़ लेती है, और फिर लेफ्ट राइट नंद भवन की ओर जुलूस निकल रहा है। हाँ उसमें अलग प्रकार के लोग हैं जुलूस में, जो लोग हमेशा माखन चोरी करते हैं लेकिन हमेशा भाग जाते हैं वो बहुत दुखी हैं, अरे हमारा लीडर पकड़ा गया, हमारा कैप्टन जो है आज कैद में आ गया, वो बहुत दुखी है, वो परेशान है। और जो लोग हर रोज़ या किसी किसी दिन पकड़े जाते हैं और कन्हैया भाग जाता है वो बड़े खुश हैं, अच्छा हो गया हम रोज़ हर रोज़ पकड़े जाते हैं, आज हमारा सरदार पकड़ा गया, बहुत अच्छी बात है। और कुछ गोपियाँ जो रास्ते में खड़ी हैं वो तालियाँ पिट रही हैं, अच्छा है अच्छा है, रोज़ हमारे को नंद बाबा के पास घर में जाके यशोदा मैया से ताने सुनने पड़ते हैं, हमको चीटिंग करता है, आज तो प्रभावती ने पकड़ लिया इसको, बहुत अच्छी बात है। प्रभावती का हौसला बढ़ रहा है, मतलब मैंने आज कुछ बहुत वीरता का काम किया है, मैंने कन्हैया को पकड़ा है, अब मैं मैया के पास पेश करूंगी रंगे हाथ, क्या मैया कहेगी मुझसे, कई बार सुन के आई हूं कि रंगे हाथ लेके आओ, आज लेके जाऊंगी। लेफ्ट राइट एकदम कलाई कस के पकड़ी हुई है टाइट एकदम। तो कन्हैया बोलते हैं, अरे गोपी, उसकी ताई है ना, वो ताई मतलब उपनंद की पत्नी है, उपनंद इज ताऊ यानी कि पापा के बड़े भाई, और उसकी बहू मतलब बीवी ताई जी, ताई जी इतना मेरा छोटा सा कलाई, इतना नाजुक, इतना कोमल, हाँ, और इतना कसके पकड़ा इतने बड़े हाथ से, थोड़ी तो रहम किया कर, मेरा हाथ दर्द हो रहा है। तो कुछ नहीं, फिर लोग हंस रहे हैं, बोलता है गोपी मुझे बहुत शर्म आ रही है, सब लोग मुझे हंस रहे हैं, पूरा इतना लंबा रास्ता कहाँ से कहाँ ले जा रही हो, सब दोनों तरफ लोग खड़े हैं, लड़कियाँ खड़ी हैं, हंस रही है, मुझे ना आपके जो चुनरी है ना उससे ढक देना, कम से कम मेरा चेहरा जो ढकेगा तो मुझे जरा शर्म आएगी, थोड़ा सा अच्छा लगेगा मुझे। तो कोई बात नहीं, तुरंत अपना चुनरी ओढ़ लेती है, फिर दोबारा चालू होता है, हाथ दुख रहा है, हाथ दुख रहा है, कम से कम हाथ तो चेंज करो, मैं थोड़ी भागे जा रहा हूँ, ये हाथ से ये हाथ पकड़ो, थोड़ा इसमें रिलीफ हो जाएगा, फिर दूसरे बाद में इसको पकड़ना, मैं तुम्हारे साथ ही हूँ, कहाँ जा रहा हूँ। और अपने दोस्त को इशारा करते हैं, जो दोस्त जो है प्रभावती का लड़का ही है, उसको इशारा करते हैं, पीछे पीछे आता है। और जब गोपी बहुत देर बाद मनाने के बाद राजी हो जाती है, तो जब हाथ बदलने का समय आता है तो अपने दोस्त का हाथ उसके हाथ में देती है, देता है और पीछे से भाग जाता है, क्योंकि वो तो इतने क्या कहते हैं मराठी में कहते हैं तोरिया मधे, तोरियात मंजे का सर बहुत रुबाब में है, वो चल रही है आज में कन्हैया को पकड़ा है, तो पीछे देखती भी नहीं है, वो ऐसा ही हाथ उसके हाथ में आता है, चुनरी ओढ़ी हुई है, चुनरी उसको उड़ा के पीछे से भाग के दौड़ के घर पहुंचता है। तो मैया बड़ी भूख लग रही है, बहुत थक गया हूँ, जल्दी माखन खाओ, मैया बड़े प्रेम से माखन खिलाती है, मैया नींद आ रही है बहुत, लोरी सुनाओ, लोरी सुनाती है और सो जाता है बालक। उतने में जुलूस पहुंचता है, लेफ्ट राइट लेफ्ट राइट, चुनरी उड़ा हुआ बालक जो है पूरा कवर्ड अप हाथ में पकड़ के, यशोदा दीदी सुना तुमने, तुम्हारे लिए बहुत अच्छी प्रस्तुति लाई है आज, ग्रेट गिफ्ट आई हैव गॉट फॉर यू, ये लो। और चुनरी निकाल दी है तो उसी का लड़का दोबारा, प्रभावती अरे कैसी गोपी है तू, हाँ नहीं बावड़ी है गई तू, समझ में आ रही है कि मेरा बालक है तुम्हारा बालक है, कितनी बार गलती करोगी, अभी इस बार बालक को लेके आई, अगली बार खसम को लेके आओगी, मतलब पति को लेके आओगी ढक्के कि मेरा बालक है करके, तभी तो सुधरा करो। इस तरह से ऐसी चटपटी लीलाएं ब्रज में होती रहती है, इसलिए कहते हैं ऐसो चटक मटक को ठाकुर तीनों लोकों में ही नाए, इन ऑल द थ्री वर्ल्ड्स, ऐसे क्या करें इंग्लिश में उसको क्या बता सकते हैं, चटक मटक को ठाकुर मतलब क्या है, नोबडी कैन ट्रांसलेट। तो ऐसे नटखट बालक जो है वो ब्रजवासियों को आनंद के सागर में डुबा देते हैं। सत्यव्रत मुनि कहते हैं कि नंद बाबा इतने भाग्यवान हैं कि उनके आंगन में साक्षात गौलोकेश्वर अखिल ब्रह्मांड नायक नियंता जगत निर्माण करता, उनके आंगन में बालक बनकर डोल रहा है, नंगे पैर डोल रहा है, कभी कभी कपड़े भी नहीं पहनता है, मिट्टी में लोटपोट हो रहा है, हाँ गाय के बछड़े की पूंछ पकड़ के गोबर और गोमूत्र के मिक्सचर में पेट के बल पर स्केटिंग कर रहा है। तो क्या होता है ना, अभी वो बछड़े हैं छोटे छोटे, तो उनको श्रृंगार करके गौशाला भेज देते हैं और देखते हैं क्या चल रहा है, तो बालकों को रेंगते, बालक है ना ऐसे रेंगते हुए, तो रेंगते रेंगते बछड़े का पूंछ पकड़ते हैं और पूंछ पकड़ के खड़े हो जाते हैं, और जैसे ही पूंछ पकड़े खड़े थोड़ा पूंछ खिंच जाती है ना ऐसा वाइल यू आर पुलिंग एंड स्टैंडिंग, तो थोड़ा खिंच जाती है, वो खिंचने पर जो बछड़ा है वो थोड़ा सा डिस्टर्ब हो जाता है, वो भागने लगता है, ये लोग पूंछ नहीं छोड़ते हैं कृष्ण बलराम, तो जैसे ही बछड़ा आगे जाता है पूंछ हाथ में रहती है तो बछड़ा पेट के बल पे गिर जाता है, इज फॉल्स ऑन द एब्डोमेन, और नीचे क्या है गोबर और गोमूत्र का फाइन मिक्सचर, फिर वो भागते रहते हैं और ये पेट के बल पे उसको पकड़ के सब जाते रहते हैं। रोहिणी मैया देख रही है आंखों में आंसू लेकर, अरे यशोदा दीदी आ जाओ देखो देखो क्या हो रहा है, यशोदा दीदी भाग भाग के आती है, दोनों के आंखों में आंसू है, देखो कैसे बालक लीला कर रहे हैं। तो ऐसे सुंदर लीला, परमात्मा है वो, परम भगवान है, सब सृष्टि का निर्माण करते हैं, नरसिंह भगवान बनकर खंभा तोड़ के आते हैं और हिरण्यकश्यप को फाड़ देते हैं, हाँ वराह को मार दे, वराह बनकर हिरण्यक्ष को मार देते हैं, राम बनकर रावण को मार देते हैं इतने भयंकर राक्षस को, वही छोटे छोटे बालक बनकर, असहाय बालक बनकर, उनको चलना भी नहीं आता है, बोलना भी नहीं आता है, खाना भी नहीं आता है, पीना भी नहीं आता है, ऐसे बालक बनकर ब्रज में आकर नंद बाबा के आंगन में डोल रहे हैं। तो हमने शुरुआत किया था कि इतने सुंदर हैं कि सात दिन सात रात तक पड़े रहे, पकड़े रहे गोवर्धन को, फिर भी किसी को भूख नहीं लगी, तो वो जो गोवर्धन है वो जब 7 दिन 7 रात लेके खड़े थे, तो ऐसा नहीं कि कल खड़े हैं बस, कुछ बातें नहीं हो रही, कुछ नहीं हो रही है, सब देख रहे हैं, वो भी शांति से खड़े हैं, ऐसा हो सकता है क्या? इतना नटखट बालक है, इतना बड़बड़ किया था उसने कुछ देर पहले, और पापा को कन्विंस कर दिया कि इसका पूजा मत करो, गोवर्धन का ही पूजा करो। इतना बोलने वाला बालक शांत कैसे रह सकता है? तो जब वो उठाए खड़ा है लेफ्ट हैंड में, तो मैया परेशान क्यों है? अरे सुबह से इसने कुछ खाना ही नहीं खाया। तो कह रहे हैं कि थोड़ा मक्खन तो खा ले, थोड़ा बल तो आएगा। वो मन में बड़ा गर्व हो रहा है उसको कि अच्छा किया मैंने पद्मगंधा गायों को इतना संभाल के पाला, उतना इनका दही दूध बना के खिलाती रही, काम आया ना आज, देखो उठा के खड़ा है। उसको लग रहा है कि मैंने जो इतना मेहनत करके दूध दही मक्खन बनाया और इसको खिलाया, उसका आज इतना फल मिल रहा है। बड़ी खुश है वो, अपने आप पे बड़ी खुश है। कह रहे हैं कि अरे बालकों आप देख रहे हो यहाँ वहाँ से, अरे बालक जरा हाथ तो चेंज करो, कम से कम ये हाथ में दर्द होता होगा। तो वो कुछ नहीं हो रहा है उनको, तो ये हाथ को मालिश कर रही है मैया कि बेटा को दुख रहा है, तो फिर कदा गिर गया तो सब लोग रहे, गिर गया तो सब लोगों को यही परेशानी है, गिर गया तो कैसे होगा, लेकिन वो आराम से खड़े हैं। फिर जब वो मैया बोल रही है कि अच्छा हुआ ना मैंने माखन खिलाया, काम आया ना आज, तो बालक बोल रहे हैं नहीं मैया आपको तो पता ही नहीं है, अरे हमने जो उसको ट्रेनिंग दिया ना रोज कुश्ती का, ये सुबल ये मधुमंगल ये सब लोग रोज उसको कुश्ती में हराते थे, वो हरा हरा के उसके बाजू में इतना बल आया, देखो आज पूरा गोवर्धन को उठा के खड़ा है। तो जब ये ग्वाल बाल सोच रहे मैया को कुछ पता नहीं है, और सोच रहे कि हमारा ही काम है ये, हमने ही पूरा ट्रेनिंग दिया हुआ है इसलिए इतना बल आया हुआ है, तो बड़े लोग सोच रहे हैं कि अरे ये तो बालक है, इनको क्या पता है, गिर जाएगा तो अपने डंडे उठाओ और सपोर्ट दे दो, पता नहीं बालक का हाथ कब टायर्ड हो जाएगा और कब गिर जाएगा, तो परेशानी हो जाएगी, सब लोग डंडा लेके खड़े हैं उसके ऊपर। तो कन्हैया कहते हैं चलो कोई बात नहीं, इनको भी जरा मजा दिखाते हैं, थोड़ा सा टिल्ट कर देते हैं पहाड़ को। अरे सब लोग अरे नहीं हमने हमने वही उठा रहा है। तो उसका रहस्य ये था कि एक बार अगत सिंह मुनि पंगत में बैठे थे भोजन करने के लिए, तो वो ऐसा है ना कि वो समुद्र भी एक घूंट में पी लेते हैं, इन बिटवीन एक समुद्र का घोट पी लेते हैं, ऐसा उनका एपेटाइट है। तो ये पार्वती जी बहुत परेशान हो गई थी, बहुत लंबी कहानी है छोड़ो कोई बात नहीं। तो पार्वती ने श्री कृष्ण से कहा था कि ये अगस्त्य मुनि भी आ रहे हैं, पर मैं होंगी जरूर पार्वती अन्नपूर्णा, लेकिन अगस्त्य मुनि तो अगस्त्य मुनि है, उनको कौन संतुष्ट करेगा, किसकी शक्ति है। तो कृष्ण ने कहा कोई बात नहीं मैं हूं ना, मैं करूंगा आपका इलाज। और लास्ट में पंगत में बैठते थे वो अगस्त्य मुनि, और जैसे आप पंगत बैठे हैं, हम आए प्रभु जी थोड़ा सा आगे, थोड़ा सा थोड़ा आगे सा, और लास्ट में कैसा पूरा प्लेट में जितना है उनका उनको सब सब्जी पर्वत चावल पर्वत सब कुछ पर्वत भी समान, और उसके पहले कृष्ण बैठते हैं सेकंड लास्ट। और पंगत में रिवाज कैसा होता है कि जब सीनियर मोस्ट आदमी उठेगा ना तो आप उठ सकते हो, आपका भोजन हो भी गया तो आपको बैठना पड़ेगा, सीनियर मोस्ट आदमी उठेगा तो ही आप बाद में उठ सकते हो उसके। तो कृष्ण भगवान तो जूनियर थे ना उम्र से लीला के कारण, अगस्त्य मुनि बहुत बूढ़े थे। तो बीच में जब उन्होंने पूछा पार्वती जी को कैसा है रसोई में स्थिति कैसी है, बोले समाप्त हो रहा है सब कुछ। तो कृष्ण भगवान उठ गए बीच में से ही, उठ के आ चले गए तुरंत। तो अगस्त्य मुनि को अच्छा लगा नहीं, उन्हें कहा अरे अभी तो मैंने एक घूंट बीच में पानी भी नहीं पिया है, मैं तो शुरुआत ही कर रहा हूँ मैं, तुम उठ के चले गए, चलो मैं भी जाता हूँ उठ के। तो कृष्ण भगवान ने कहा कोई बात नहीं आपको जल पिला देंगे हम, जल की चिंता मत करना। तो जब उन्होंने वो टेढ़ा किया ना गोवर्धन, तब तो उधर अगस्त्य मुनि खड़े थे, उन्होंने पानी पी लिया और अपना प्यास बुझा लिया। तो भगवान कैसे है ना, एक एक लीला में कई सारी लीलाएं करते रहती हैं, वो किसी को पता है किसी को पता नहीं, ऐसा ही चलते रहता है सब कुछ। तो ये डंडे वाले को तो सिखा दिया ना कि आपने पकड़ रहे मैं ही पकड़ रहा हूँ। तो ये सब सुनकर गोपियाँ बोल रही है ये मैया ये बालक और ये बाबा लोग इनको कुछ को पता नहीं है, या रियल कारण क्या है, क्यों पकड़ा इसने, क्योंकि राधा रानी अपनी तिरछी चितवन से उसको देख रही है, और उसके साइड लॉन्ग ग्लांसेस की वजह से सारी शक्ति आ रही है उसके हाथ में, और वो उनको देख रहा है तिरछी नज़र से, और वो उनको देख रही है तिरछी नज़र से, इसलिए शक्ति का आदान प्रदान हो रहा है, इसलिए तो पकड़ के रखा है। ये मक्खन वक्खन सब झूठा बात है, ये कुश्ती वुश्ती सब कोई मतलब नहीं इसका। सब ताकत तो नज़र में है, हमारी लाली की नज़र में है, हमारी सहेली की नज़र में है। तो फिर उधर ग्वाल बाल और गोपियों की थोड़ी सी बहस हो गई प्रेम वाली, मतलब ऐसे कैसे हो सकता है, तो अभी कैसे दिखाएंगे आपको उसका प्रूफ क्या है, बाद में दिखाएंगे। तो उन्होंने कहा ठीक है लीला चलने दो, बाद में देखेंगे इसका क्या है। तो कहते हैं कि जब 7 दिन के बाद में गोवर्धन नीचे रखा, अभी ये इसको कहते हैं ओरल ट्रेडिशन, मतलब आख्यायिका कहते हैं उसको, आख्यायिका मतलब इस लाइक अ लोकल फोक टेल, ये ब्रजवासियों की कहानी है। आप बोलेंगे किस शास्त्र में लिखी है, तो मुझे नहीं पता किस शास्त्र में लिखी है। तो वो गोवर्धन नीचे रखते हैं और भगवान जो है वो गोवर्धन को कितना डैमेज हो गया, कितना नुकसान हो गया वो देखने के लिए, ऐसे डैमेज तो कुछ हुआ नहीं लेकिन फिर भी ऐसे आते हैं। तो उस समय ग्वाल बाल गोपियों को मिलते हैं, वो आपने तो कहा था ना कि नज़रों के बल से उठा के रखा था, मतलब कृष्ण ने नहीं उठाया था, नज़रों ने ही उठा के रखा था, बहाना कृष्ण की उंगली का था लेकिन उनके नज़रों की शक्ति से, तिरछी चितवन से वो उठाया हुआ था अपने आप को। अच्छा अभी उठा उठा के दिखाओ। तो सब गोपियाँ जो है राधा रानी को लेकर गोपों के साथ में गोवर्धन के पास जाती है और राधा रानी सामने आती है और पहले नीचे देखती है गोवर्धन के तल की तरफ, फिर धीरे धीरे सबके आंखों के सामने अपनी नज़रों को उठाती है, वैसे गोवर्धन आकाश में उठने लगता है। फिर वो आकाश में ऊपर देखती है तो बहुत ऊंचाई पर गिरिराज ऐसे ही खड़े, कोई हाथ भी कुछ नहीं, नीचे डंडा वंडा कुछ नहीं है, ऐसे ही खड़े बहुत देर तक आकाश में गिरिराज जी खड़े हैं। बाद में सखिया कहती है आप नीचे रख दें, हाँ ठीक है रख दो। तो फिर धीरे धीरे नीचे देखती है तो गिरिराज नीचे आते हैं, फिर अपनी जगह पर आ जाते हैं और राधा रानी की। तो इस तरह से गिरिराज जी का लीला जो है गिरिराज धरण का, वो 7 दिन 7 रात तक इतना आनंद आया उसके अंदर, इतना आनंद आया जीव गोस्वामी कहते हैं कि इसका वर्णन कोई नहीं कर सकता है, नोबडी कैन डिस्क्राइब उधर क्या हुआ। ऐसा कोई पंडित नहीं है, कोई 1000 मुख वाला और 1000 वर्ष वाला आयु वाला भी व्यक्ति होगा तो एक दिन का भी लीला नहीं वर्णन नहीं कर सकता है, इतनी अनंत लीला है। कृष्णदास कविराज गोस्वामी भी कई बार लिखते हैं चैतन्य चरितामृत में कि जो कुछ हो रहा है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। समझो आपको कहा जाए कि जब भक्त लोग डांस कर रहे हैं तो आप उसका वर्णन करो, कोई अंधा आदमी है उसको बताओ क्या हो रहा है एग्जैक्टली, तो कर सकते क्या आप? दामोदर पंडित जी नाच रहे हैं, मैं भी नाच रहा हूँ, ऐसे हाथ कर रहा हूँ, कितना डिस्क्राइब करेगा वो क्या करेगा? आदमी बोलेगा आई कांट डिस्क्राइब दिस, ये वर्णन नहीं कर सकता मैं। ऐसे कृष्णदास कविराज गोस्वामी चैतन्य चरितामृत में कई बार कहते हैं कि जो हो रहा है उसका वर्णन मैं नहीं कर सकता हूँ। उसी तरह से कृष्ण भगवान की लीलाओं को वर्णन कौन कर सकता है? जब से वो पृथ्वी को धारण किया ना शेष ने अपने बीच वाले फन में, तो उन्होंने पूछा कृष्ण को, जब पृथ्वी को धारण किया उन्होंने, इसको शेष आख्यान कहते हैं, तो कृष्ण को जब विष्णु ने उनको कहा कि आप पृथ्वी को अपने सर पे उठाए कर रखो, तो उन्होंने कहा कब तक उठाना है? उन्होंने कहा कि आपके 1000 मुख से आपको मेरी लीलाओं का वर्णन करना है, जब समाप्त तो होगा तो नीचे रखना है। तब से लेके शेष जी वर्णन कर ही रहे हैं, नीचे रखने का समय अब तक आया नहीं है, कैसे रख सकते हैं? हाँ हरि अनंता हरि कथा अनंता देर इज नो क्वेश्चन ऑफ एंड। तो बेचारे शेष जी भी पकड़े खड़े हैं पृथ्वी को और सारे मंडल को और कथा भी चल रही है और आराम से खड़े हैं। तो इस तरह से ये जो भगवान की लीलाएँ हैं इसमें अनंत अमृत है, आनंद है, और जिस भी जीव को इसमें रुचि आ जाती है, इसमें टेस्ट लग जाता है, वो सबसे भाग्यवान जीव है। वही भाग्यवान जीव है जिनको भगवान की कथा में रुचि आती है। हाँ ये शाहरुख खान और फिल्म स्टार और फिल्मी हीरोइन और इनका कथा सुन के जिसको रुचि आती है वो डस्ट में हमेशा रहते हैं, स्टार डस्ट क्या कहते हैं उसको यहीं के डस्ट में फंसे रहते हो, जिनको यहाँ का लव स्टोरी अच्छा लगता है, और जिनको वो लव स्टोरी अच्छा लगता है वो गोलोक चले जाते हैं, उनको यहाँ का डस्ट का कोई कनेक्शन नहीं होता है। तो ये बहुत ज़रूरी समझना है, हम सब लोगों को एक हीरो चाहिए, अब वी ऑल वॉन्ट अ हीरो, सब लोगों को मन में एक हीरो चाहिए होता है, और सब लोगों को उन हीरो की कहानियाँ डिस्कस करने में अच्छा लगता है, ये हमारी जरूरत है, ये आत्मा का स्वभाव है कि एक नायक होता है और एक उसकी कहानियाँ होती है, जिसको कहने में, जिसके हम फैन हैं, वो व्यक्तियों को कहने में बड़ा आनंद आता है उसका। और सही आत्मा का आनंद जो है वो हरि कथा में ही है। जो हरि कथा में रुचि प्राप्त करता है वो जीवन में सबसे सर्वोच्च आनंद को प्राप्त करता है, और वही इस जीवन के सारे बंधन से मुक्त होकर भगवत धाम में, भगवान के धाम में नित्य लीलाओं का श्रवण और कीर्तन करने के लिए पहुंच जाता है। तो आज कार्तिक का आखिरी दिन है और आज तुलसी जी और शलग्राम जी का विवाह का दिन है। वैसे पुराणों में कई वृंदा देवियों का वर्णन है, एक वृंदा देवी नहीं है, लेकिन जिस वृंदा देवी को हम जानते हैं तुलसी के रूप में, वो गौलोक की गोपी थी। और गौलोक में और भी एक था व्यक्ति, तो दोनों को शाप मिला, पृथ्वी पर जाओ और जन्म ले लो राक्षस कुल में। तो जो व्यक्ति था वो जलंधर नाम का राक्षस, जल के अंदर पैदा हो गया वो, और बड़ा वीर बना वो, और वृंदा देवी मनुष्य बनकर जन्म लिया उसने, और दोनों का प्रेम हुआ, विवाह हुआ, वैसे योजना थी भगवान की। और जैसे ही इनका विवाह हुआ तो वृंदा देवी इतनी श्रेष्ठ पतिव्रता थी कि अपने पतिव्रता बल से उसने अपने पति के चारों ओर सुरक्षा कवच पैदा बनाया था, और खास करके जब वो युद्ध को निकलते थे तो वो अनुष्ठान व्रत में बैठती थी, और उसके बल से किसी भी देवता का कोई शस्त्र उस पर काम नहीं करता था, और वो हर बार जीतते ही जाता था। कई बार जीत गए, देवता लोगों को परास्त कर दिया, धनहीन कर दिया, साम्राज्यहीन कर दिया, अधिकारहीन कर दिया। तो सब देवता विष्णु के पास गए, कहा कि महाराज जी कुछ करो, ना धन है, ना पद है, ना अधिकार है, ना पोजीशन है, सब खत्म हो गया पूरा, क्या करें, मतलब क्या करें, इसका प्रतिपदा का बल इतना तेज है कोई नहीं उसको मार सकता है, अभी छल किए बिना ये नहीं मर सकता है, इसको छल करना पड़ेगा। छल का मतलब क्या है, व्हाट इज इट कॉल्ड, चीटिंग करना पड़ेगा। तो देवताओं को भगवान ने आदेश दिया, जाओ ललकारो जलंधर को, युद्ध के लिए आह्वान करो। जैसे सुग्रीव को वाली ने कई बार मारा था, पीट पीट कर पटक पटक के मारा था, तो भगवान ने कहा जाओ उसको ललकारो। कितना टेंशन की बात है ना, जिसको 10 बार पीट चुका है वो 11 बार कैसे ललकारेगा उसको। तो राम जी कहते कोई बात नहीं, मैं हूं ना, आ रहा हूं। तो ललकारा तो वाली को बहुत गुस्सा आया, अरे इतनी हिम्मत, मैं तो उसको किष्किंधा पर्वत पर भगा के आया था, इतनी उसकी हिम्मत कि मेरे दरवाजा के ललकार रहा है, तारा तारा उसको तिलक लगाते जाओ। और उसको इतना पीटता है, इतना पीटता है, इतना पीटता है कि ऐसा आधमरा होके सुग्रीव लौट के आता है, अरे राम भगवान आपने तो वादा किया था कि आप उनको बचाएंगे, आपने तो कुछ किया ही नहीं। मतलब क्या करूँ, आप और वाली इतने सेम दिखते हो कि मैं संभ्रम में था कि किसको बाण चलाएगा तो शायद आप मर जाए, तो इसलिए मैंने कुछ नहीं किया। अरे भगवान आप तो दुविधा में रहे, मेरी तो हालत खराब हो गई। तो लक्ष्मण जाओ मन की फूलों को लेके आओ, माला बनाओ, पहना दो इसको। तो पहना दिया उसको, बेचारा बहुत थक गया था, सो गया, अगले दिन पहनाया, बोले वाह सुग्रीव जाओ वाली को ललकारो। तो इसका हिम्मत नहीं हो रही ललकारने की, कैसे ललकारू, जाओ मैं हूं ना अभी, तुम्हारा माला पहना दिया तुझको। तो जाके ललकारता है, तो वाली बोलता है सुग्रीव ये हिम्मत तुम्हारी, तारा कहती है मत जाओ, कल पीट चुका था, आज दोबारा आया है, मतलब उसके पीछे कोई फोर्स है, बिना फोर्स के कल पिटा हुआ आदमी सामने कैसे आएगा आज। और फिर भगवान वाली का वध कर देते हैं, वो लंबी कहानी रामायण की। वैसे ही यहां पर पीटे हुए देवताओं को विष्णु बता रहे जाओ ललकारो उसको, बड़े डर डर के ललकारते हैं, और युद्ध होता है और ऐसा पीटता है वापस जलंधर देवताओं को, सब जगह परास्त करते करते आ रहा है। तो भगवान ने तो कहा था मैं करूंगा कुछ छल कपट, वो कुछ भी नहीं हो रहा है, सब पीटते जा रहे हैं, तो हारते जा रहे हैं। तो उनको मन में संदेह हो रहा है क्या एक्चुअली हो रहा, होने वाला है कि नहीं। और अचानक भगवान का आदेश आता है शंकर जी को, चलाओ त्रिशूल। और त्रिशूल चलाते हैं तो जलंधर की गर्दन कट जाती है। इसका कारण क्या है, क्योंकि उस समय भगवान विष्णु जलंधर के घर में, जहाँ वृंदा देवी अनुष्ठान में बैठी हुई है, अपने पति को सुरक्षा कवच दे रही है, वहाँ जलंधर का भेष पहनकर पहुँच जाते हैं। जैसे ही देखती है वृंदा देवी कि मेरे पति आ गए, युद्ध समाप्त हो गया, तो अनुष्ठान को तोड़कर पति की सेवा करने के लिए आ जाती है। जैसे ही अनुष्ठान टूटता है, भगवान मन से आदेश करते हैं शिव जी को, उसका त्रिशूल जो है उसका सर काट के ऐसे फेंकता है कि सर आकाश से पुकारता हुआ, वृंदे वृंदे क्या हुआ, वृंदे क्या हुआ, ऐसे पूछते पूछते आकर उसके आंगन में गिर जाता है। तो ये पति की सेवा में है, उसके आंगन में धड़ाड़ करके पति की आवाज़ और सर गिरता है। पहले पति की आवाज़ सुनती आकाश से, अरे पति सामने बैठे हुए हैं, आकाश से आवाज़ आ रही है, फिर देखते हैं कि पति का सर जो है आंगन में गिर गया है। तो कहती आप कौन हो, ऐसा एकदम क्रोध से पूछती है। तो उसके पातिवृत्य तेज के सामने विष्णु अपना जलंधर का रूप नहीं पकड़ सकते, मतलब नहीं बनाए रख सकते, उनको छोड़ना पड़ता है रूप, इतना तेज है पातिवृत्य का, उनका छल वहाँ टिकता नहीं है, वो तुरंत विष्णु के रूप में प्रकट हो जाते हैं। और जैसे ही विष्णु के रूप प्रकट होते हैं, देखते हैं मेरे पति का वध हो गया छल के वजह से, तो पति का सर गोद में लेती है और विष्णु को शाप देती है कि आप पत्थर बन जाओगे। तो भगवान कहते जरूर पत्थर बनेंगे, लेकिन आपके चरणों में बनेंगे, क्योंकि वो पुराने जन्म की भगवान की विष्णु की भक्त थी वो। तो उन्होंने कहा कि आप भी पौधा बनोगे, मैं आपको शाप देता हूँ, और आप जब पौधा बनोगे तो आपके चरणों में मैं आश्रय ग्रहण करूँगा। तो वो जो पत्थर है सो कॉल्ड तथा कथित, वो क्या है, शालिग्राम शिला है, भगवान की सुंदर चमकती हुई, हाँ है तो काले रंग की लेकिन इतनी सुंदर रहती है। और वो जो वृंदा देवी पौधा बनी वो है तुलसी का पौधा, और बड़ी सुंदर लीला है। और भगवान ने कहा कि हम केवल गंदकी नदी के तल में रहेंगे। तो आज भी पूरे विश्व में केवल गंदकी नदी के तल में, हाँ रिवर बेड के ऊपर ही ये शिलाएं प्राप्त होती है। और भगवान ने कहा है कि मेरे पत्थर जो है उसको एक विशेष कीड़ा जो है, सुदर्शन कीड़ा, वो अंदर से उसको इस तरह से खाएगा कि अलग अलग रूप बनाएगा, मेरे चक्रशिला बनाएगा, जगन्नाथ शिला बनाएगा, दामोदर शिला बनाएगा, विष्णु शिला बनाएगा, अनंत शिला बनाएगा, शेष शिला बनाएगा, अलग अलग जितने भी रूप हैं उन सबका रूप अंदर से बनाएगा, बाहर से नहीं, वो पत्थर के अंदर रहेगा, अंदर से ही उसको बनाएगा कलाकृति। तो ऐसी अद्भुत शालिग्राम शिला है जिसके आज तुलसी के साथ विवाह होता है। तो शालिग्राम शिला का इतना महात्म्य है, इतना महात्म्य कि जो भी इसकी पूजा करता है वो धन संपत्ति विद्या ऐश्वर्य यश कीर्ति संपत्ति और पुत्र सबसे समृद्ध हो जाता है। लेकिन जब आपने उसका सेवा स्वीकार किया, आपको सेवा को रोज करना पड़ेगा, जहाँ जाएंगे वहाँ साथ में ले जाना पड़ेगा। पर कम से कम गंगा जल या पवित्र जल नदी का तुलसी, कम से कम मिनिमम तुलसी तो होना ही चाहिए, क्योंकि उन तुलसी का उनका संबंध है, और चंदन सबसे मिनिमम तुलसी, उसके बाद चंदन और गंगा जल, इससे उसकी पूजा होनी चाहिए। और जब जा रहे यात्रा में तो आपके साथ में ड्राई फ्रूट्स और फ्रूट लेके जाना होगा, और जहाँ पर बैठे हुए हैं वहाँ सुबह आपको इसका सेवा करना होगा, और कुछ खंड हो गया तो उसका रिएक्शन बहुत गड़बड़ मामला है। हरे कृष्णा। तो ऐसा ये पवित्र दिन है, तुलसी का महात्म्य भी अगाध है। तुलसी एक ऐसा एक ही पौधा है पूरे बॉटनी में, हाँ क्या कहते हैं उसको, शास्त्र वनस्पति शास्त्र बॉटनी, उसके अंदर पूरा बॉटनी के अंदर तुलसी का डेफिनेशन नहीं है, हर एक प्लांट का नाम है उसके अंदर लेकिन तुलसी का प्लांट नाम नहीं है। तो तुलसी ऐसी एक जाति है जो ऐसा एक ही पौधा है जो 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है, बाकी सारे पौधे पेड़ जो होते हैं वो रात को ऑक्सीजन देते हैं, दिन में कार्बन डाइऑक्साइड देते हैं, लेकिन तुलसी का एक ऐसा पौधा है जो 24 आवर्स जब तक डाला है तब तक उसका जीवन समाप्त होने तक 24 आवर्स ऑक्सीजन देता है वो। उसके कई हज़ारों मेडिकल बेनिफिट्स हैं, लेकिन मेडिकल बेनिफिट छोड़ दो उसको, लेकिन तुलसी भगवान ने वहाँ पर तुलसी को वरदान दिया, शाप दिया, वरदान भी दिया कि तुम्हारे पौधे बनने के बाद में तुम्हारा पत्ता मेरे भोग पर रखे बिना मैं उसको ग्रहण नहीं करूँगा, आई विल नॉट एक्सेप्ट एनी भोगा विदाउट योर लीफ ऑन दैट, ऐसा तुलसी को वरदान दे दिया। तुलसी का जो महत्व है, तुलसी का पत्ता जब किसी पात्र में किसी जल को स्पर्श करता है तो उस जल में विश्व की सारी पवित्र नदियां प्रवेश करती है. ऑल द होली रिवर्स एंटर इन दैट वाटर वेयर तुलसी इज टच्ड. प्रभु जी इस विषय में बहुत पंडित हैं, विज्ञान उनको बहुत ज्ञान है इसके बारे में. तुलसी का उन्होंने पूरा एक डॉक्यूमेंट निकाला हुआ है, फुल इन्फॉर्मेशन. इतना महात्म्य है तुलसी का. स्पर्श जिस व्यक्ति को होता है मृत्यु के समय, उसके लिए नरक के दरवाजे बंद हो जाते हैं और प्रेम भक्ति का दरवाजा खुल जाता है. ऐसा तुलसी का महात्म्य है. यानी कहानी च पापानी ब्रह्म हत्यादि कहानी च, ब्रह्म हत्या करने का पाप भी जो है तुलसी की प्रदक्षिणा करने पर नष्ट हो जाता है. इतनी तुलसी की महिमा है, अगाध महिमा है. तो ये सब लीला है भगवान की. और ये तुलसी का पौधा जो है, उसके बिना भगवान की पूजा अधूरी है, भगवान की सेवा अधूरी है, भगवान की भक्ति का भाव अधूरा है. और ये वृंदा देवी इतनी प्रिय भगवान को कि अपने दिव्य धाम का नाम क्या रखा है, वृंदावन. एक है गाय और एक है वृंदा, ये दोनों के ऊपर अपना नाम धाम का दिया हुआ है, गौलोक वृंदावन धाम. और इतनी भक्ति है इसकी कि राधा रानी ने अपने हाथ से वृंदावन को बनाया है, लेकिन वृंदा देवी की भक्ति देखकर इस वृंदावन मतलब जो वन को वृंदा देवी को दान दे दिया उसने, तब से इसका नाम वृंदावन पड़ गया. पृथ्वी पर की लीला है ये. ऐसी राधा रानी भी इस वृंदा देवी गोपी की महिमा को जानती है. विशेष गोपी है वो, अष्ट सखियों से अलग है लेकिन बहुत विशेष गोपी है. और वही पौधा बनकर इस पूरे विश्व को पुनीत करने के लिए हमारे बीच पधारती है. हम सब तुलसी देवी के बहुत ऋणी है और तुलसी देवी के चरणों में प्रार्थना करते हैं कि तुलसी देवी की कृपा से हम सब लोग भगवान के धाम में प्रवेश कर सकते हैं. मोरा यही अभिलाष विलास कुंजे दियो वास. हाँ, तो भगवान जहाँ विलास लीला करते हैं, विलास करते हैं, उस धाम में तुलसी की कृपा के कारण हमको प्रवेश मिलता है. और साथ साथ प्रवेश मिलने के बाद में कोरो निज दासी में सेवा करने का मौका भी देती है. तो ये तुलसी देवी की जो महिमा है वो अगाध है. और आज के दिन कार्तिक दामोदर मास के आखिरी दिन तुलसी महारानी का दिन है. सब लोग तुलसी महारानी का स्मरण करो. तुलसी महारानी का स्मरण करने से भी हृदय में शुद्धि होकर भगवान की भक्ति उत्पन्न होती है. बोलो श्री कृष्ण भगवान की, वृंदा देवी की, राधा रानी की, श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, निताई गौर प्रेमानंदे, जय जय श्री राधे. श्याम.